विचार करने पर तो ये बात मालूम होती है कि सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग की बातों में शिक्षा मिलती है जिनसे जीवन सुधरता है। अपने जीवन की भूलें मालूम होती है उनके दूर करने से अपना जीवन सुधरता है, आयु सुधरती है। और पाप है वो तो कि हम घर पर ही कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। परंतु मैं देखता हूं कि हमारे भाई बहनों का उत्साह जो पाठ के लिए होता है उतना सत्संग के लिए नहीं होता। कलकत्ता जयपुर आदि शहरों में देखा है बहुत प्रसिद्धि होती है, सत्संग में भी होती है पर पाठ में बहुत ज्यादा। और यहां भी देखा तो बाहर के लोगों की लारी भर भर के आ रही है पाठ के लिए। तो पाठ से कोई विशेष ही लाभ होता है लोगों को उत्साह देने से। दूसरी बात ये है उसमें कारण कि भगवान के चरित्र हैं और भगवान के ऊंचे भक्त श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी है तो दोनों मिलती है। हे तुरहित दुख जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक दुरारी। तो भगवान और भगवान के सेवक ये दो ही बिना कारण हित करने वाले हैं। तो भगवान के चरित्र और गोस्वामी जी महाराज की वाणी दुनिया मात्र की हित करने वाली है। तो रामायण में नहीं समझने वाले, नहीं पढ़े हुए वे भी इसी ध्वनि में मस्त हो जाते हैं। और तीसरी बात है जो साथ मिलकर करते हैं ना, अगर हजार आदमी होते तो एक एक को हजार हजार गुना पुण्य होता है। सुनने को वही मिलती है, देखने को पास मिलता है, देखने को लोगों को देखते हैं तो इनसे एक उत्साह बढ़ता है, उससे भी एक शक्ति आती है। तो ऐसे पाठ में सम्मिलित होना बहुत लाभ की बात है। और भी हम भाई बहनों को कहना चाहिए, अपने शहर में भी मानो बीकानेर गंगासर बीनासर इन शहरों में रहने वाले भाइयों को भी चाहिए कि औरों को भी लावे। आप भी चलो पाठ में, अच्छा देखो तो सही, एक दो दिन देखो, देखो आप पाठ तो अपरिचित जगह भी पहला दूसरा तीसरा दिन होता है तो चौथे पांचवें दिन तो बहुत लोग आ जाते हैं। स्वाभाविक देखते हैं तो उनके पता लगता है। तो यहाँ भी इतना विशेष काम पड़ा नहीं है, बीकानेर में पाठ का काम पड़ा है, तो यहाँ पर लोग आवे और आपस में प्रचार करें, औरों को भी कहें लाभ की चीज है वो अपने भी लेना चाहिए और भी ले ले इतना अच्छा है। हृदय का भाव चाहिए कि सबको लाभ हो, कोई हो चाहे अपने पंजाबी हो चाहे ईसाई और मुसलमान भी कौन हो। हम देखते हैं रामायण का चित्र आता है तो चलचित्र में लोग बहुत आते हैं, ईसाई भी और मुसलमान भी लाभ लेते हैं। राम जी के चरित्र देखने में लोगों की बड़ी भारी रुचि हुई, तो उसी रुचि को देख करके हम देखो तो हमारे जैन है, भाई है, सज्जन है, उनको भी बड़े आराम से बड़े आदर से लाओ और बैठाओ, वे भी देख रहे वो रामचरित्र देखने में लोगों ने रुचि बढ़ी है ऐसी हमने देखा है। तो वही चरित्र अभी हो रहा है तो उसमें भी एक बहुत विशेष आनंद हो रहा है। कई गांव से लारियां को भर भर करके अभी भी आ गई है तो कितना एक उत्सव है। इस बार के भाई बहनों को विशेष उत्साह सम्मिलित होना चाहिए। इसमें एक बात और बतावें, ये पाठ किया जाता है ना, जिन पुस्तकों से हम पाठ करते हैं उस पुस्तक में एक शक्ति आती है, जिस माला से हम जप करते हैं उस माला में एक शक्ति आती है, जिस आसन पर बैठ करके हम नित्य कर्म करते हैं उसमें एक शक्ति आती है। तो पाठ अपने रोजाना करने का है, वे रामायण आप लावे और उन रामायणों को अगर आप पाठ करें तो विशेष लाभ होगा। यहाँ भी प्रबंध है परंतु विशेष लाभ लेना हो तो अपने घर की रामायण लानी चाहिए और वो भी अपने पाठ करने की, नहीं तो घर से गाड़ा में लेकर के आवे और साथ ले जावे और उसी रामायण पर पाठ करें। इतना सम्मिलित पाठ एक बार भी आप रामायण पर कर लेंगे तो वो रामायण बड़ी पूजनीय आदरणीय हो जाएगी। जिसके ऊपर पाठ हो चुका है, इतना सम्मिलित पाठ हुआ है तो इस वैसे रामायण लावे और वो रामायण अपने पास रखें, इससे भी बड़ा लाभ होता है। सम्मिलित होकर लाभ लेते हैं वो अलग, और अपना अपना आसन है, माला है, रामायण है, पुस्तक गीता है आदि अपने पढ़ने की गीता है, वो रखने से बड़ी बड़े लाभ की बात है। इस बात से बोल लाना चाहिए, आसनों पर भी अपने जगह आसन हो तो बढ़िया चीज है। समुदाय है, बहनों माताओं से कहना है अपने अपने आसन पर ही बैठो, परंतु बड़ी मुश्किल होती है कि नई नई बहना आती है वे आधार बैठ जाती है, तो अपना आसन पर बैठना बहुत बढ़िया है। इतने पर भी एक मैं निवेदन करूं कि आपका आसन है और कोई नई आ गई बैठ गई तो प्यार से उसको कह दो और नहीं माने तो बिल्कुल नहीं मत करो, शांति से अपनी जान दे के वहीं बैठ जाओ, उस जगह लड़ाई कर वो जगह ले लो, वो बढ़िया नहीं होगी, वो जगह बढ़िया नहीं होगी, मन में विक्षेप हो जाएगा, अड़चन हो जाएगी, तो एक पाठ में भिन्न हो जाएगा। इस वास्ते दूसरी बहना उसे नहीं बैठे, अपने आश्रम ही रहे, पास में बहना भी कह दे भाई यहाँ बैठने की जगह बैठेगी। तो हमें कई कई बहना हमारी बड़ी विचित्र होती है, वे विवाद करती कि हम बैठेगा तुम बैठो कि हम नहीं क्यों हमारे बैठे हम भी बैठेंगे, ऐसा ज्यादा कर रही बात अच्छी बात है भाई, हार खादी झगड़ों में से कहा मारवाड़ी हार खादी झगड़ो मिट्टी अपने हार गया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। खटपट करने में अंतर्गण विषय हो जाए, हलचल हो जाए, फिर पास में वो आनंद नहीं आ रहेगा। अपने हृदय को शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है। 9 दिनों का ये अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में क्रोध मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वाणी का भोजन आदि का संयम रखो, आराम का भी खाटा भी सोने का आराम का भी त्याग करो। ये एक अनुष्ठान है, एक एक आदमी अनुष्ठान करे उसका महात्म है, और सम्मिलित अनुष्ठान हो जाए उसका बहुत विशेष महात्म है। अकेला आदमी तो कहीं भी कर सकता है, पर समुदाय कैसे मिला लेगा, ये हाथ की बात नहीं है। मिलता है तो मुख जो मिलता है, कौड़ी एक नहीं लगता, अब बैठे हो कोई आओ, परंतु कोई करना चाहे तो इतने आदमी को कैसे इकट्ठा करे, और कृष्ण से इतने सम्मिलित होकर पाठ करे, तो ये अमूल्य चीजा बिना मूल्य मिलती है तो अमूल्य, और मिलती है बिना मूल्य। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है, स्वास्थ्य विशेषता से इसके लाभ लेना है अपने, सबके सम्मिलित होकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करके एक एक को ऊंच दृष्टि से देखो। एक एक कोई गड़बड़ी भी करे तो अपने गुस्सा मत करो, गुस्सा करना खराब है, तो उस वो करता है गलती, हम करें तो दुगुना हो जाएगा ना, इस वास्ते ऐसा न करे, शांति से सहल। गीता ने कहा तान स्थिति से ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, उसको सहो, सहन ऐसी कितना महात्म बताया हमारा, वह सहने से अमृतत्वाय कल्पते, मुक्ति का पात्र हो जाता है सहने। यंग ही न व्यतियन किए थे पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो इसे सहने में बड़ी महिमा है, सहिष्णुता है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ये आपस में सहो एक की बात, क्योंकि हमारे स्वभाव को भी तो दूसरे लोग सहते हैं, कई बातें हमारे द्वारा गलतियां होती है, भूलें होती है, कसूर होता है, फिर भी जो सज्जन आदमी भी सहते हैं तो हम भी सहेंगे उनकी बात, ऐसा होता है। इससे एक विशेषता से लाभ उठा। अब एक बात और सुनाऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया बात, मैंने बहुत बार बात कही है और फिर भी कहता ही रहता हूं, परंतु हमारे भाई बहन जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते। सांसारिक काम में हमारी अधिकारिता, हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि, हमारी विद्या विशेष काम आती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी हो जाते हैं। ये बात मेरे को संतों से मिली है, पुस्तकों के साथ इतना नहीं आता है, वर्णन आता है, परंतु अधिकारी अलग अलग माने हैं, प्राय करके एक से ही चलते हैं अधिकारी है, इनके अनुसार लाभ होगा। देखो संसार में अधिकार मिलता है योग्यता से, परंतु घर में माँ के यहाँ जाओ तो यहाँ योग्यता नहीं है, माँ स्नेह करती है, वो प्यार करती है अपना संतान होने से, वहां पर ऐसा नहीं कि ये पढ़ा लिखा अधिक है तो इससे ज्यादा प्यार करें। धनादि को लेकर के पिता माता स्नेह करते हैं, परंतु अपने नाते से तो माँ ही स्नेह करती है, कपूत होता है तो भी माँ का स्नेह होता है। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, और जगह योग्यता होगी तो पद मिलेगा, परंतु भगवान के यहाँ भगवान के नाते पद मिलता है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि और अविनाशी, चार बात बताई, ईश्वर अंश एक। अब इसमें क्या बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि और परमात्मा का अंश, पांच बातें होगी। ऐसे हम परमात्मा के अंश हैं, इस परमात्मा के अंश के नाते हम सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। दूसरी बात, वो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति करना, तो उसके लिए मानव शरीर मिल गया तो इस बात का अधिकार मिल गया है, इससे भी हम सब अधिकारी हैं। हम कैसे ही हैं, किस वर्ण में है, किसी आश्रम में है, और भाई कैसे आश्रम वाले भी हैं, तो वो भूलें हो गई, उन भूलों को छोड़कर सुधार करो तो हम सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है, जीवन मुक्ति हो सकती है, भक्ति हो सकती है। इस शरीर को दुर्लभ बताया रामायण पाठ आवेगारी उत्तरकांड में, उसमें सबसे दुर्लभ मानस नहीं बताया, उसके लिए नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस शरीर से नरक भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, और मुक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, और शुभ भक्ति भी मिलती है, 84 लक्ष भूमि भी मिलती है, अधोगति ऊर्ध्वगति मध्यगति सब इस मानव शरीर से मिलते हैं। तो ऊंचे से ऊंचा लाभ मानव शरीर से हम ले सकते हैं। अनेक पाप हुए उनके लिए भी गीता ने कहा अभिषेक सुदुराचारो अभिषेक सुदुराचारी सांगोपाम पापी भी अगर अन्य भाव बचते तो उसे साधु मान लेना चाहिए। ऐसे ज्ञान के विषय में भी अभिषेक पापी है संदेह पाप समा, ऐसे पापी से पापी भी ज्ञान का अधिकारी बताएगा। ऐसे योग का गत संगस्य मुक्त से ज्ञान अवस्थित शेष यज्ञाकर्ता कर्म समग्रम प्रवलिए थे यज्ञात कर्मो अन्यत्र लोगों एवं कर्म बंधन। यज्ञार्थ न कर अपने लिए करता है तो भुंज थे पुलम पाप ये प्रचंती आत्मकारनाथ, अपने लिए न कर दुनिया मात्र के हित के लिए काम करें तो पापी से पापी का उद्धार हो जाता है। तो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग इन योगों में चलने वाले हम अगर चाहें तो जैसे कैसे ही रहे हों परंतु अब इस दिन लग जाए तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को अविनाशी तब ही एक जन्म के पाप हुए दुराचारी हम रहे सन्मुख नहीं रहे दूसरे कामों में लगे रहे उससे संकोच की क्या बात है। रामायण तो कहती है जन्म कोटि अविनाशी तब ही हम भगवान के सन्मुख हो जाए जाए वहां से सन्मुख हो जाएंगे। तीर्थ आदि के सन्मुख हम जाते हैं तो जैसे बद्रीनाथ सबसे बरोबर दूर नहीं पड़ता है, नजदीक वालों के नजदीक पड़ता है, दूर वालों के बहुत दूर पड़ता है। बद्रीनाथ की तरफ मुख भी हम कर रहेंगे तो सन्मुख तो हो जाते हैं पर दूर रहता है। ऐसे भगवान के सन्मुख होने से भगवान दूर नहीं जाते, भगवान तो नजदीक है सबके साथ में। सर्वेश मया तत्व जम सर्वों जगत अभ्युत मूर्ति न, तो कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति खाली नहीं है जिसमें भगवान न हो। तो हम जाए वहां से चले तो हम सबके सब भगवान सन्मुख हो जाते हैं। तो भगवान दूर नहीं है, ये तो दूरी अपने कर रखी है विमुख होने से, उस तरफ ख्याल नहीं करते। भगवान विमुख कभी नहीं होते, ये तो कहा कि ये तमाम प्रपज्जनते मेरे जैसे शरण होते हैं वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ, पर ये नहीं कहा कि मेरे विमुख होते हैं उसे मैं विमुख हो जाता हूँ। विमुख नहीं होते, भगवान तो सदा ही कृपालु है, माँ तो माँ ही है। अरे वो तो तमेव माता माता राम मत पिता रामचंद्र, ये राम जी तो माँ सबकी माँ है। इस बात भी भगवान हमारे हैं, उनका ये पाठ हो रहा है, रामचरित्र का पाठ हो रहा है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी विलक्षण बात है। रामायण की चर्चा सुनकर लोग कितने आनंदित होते हैं, विदेशी लोगों को मालूम हुआ है, हमारे यवन भाई मुसलमान है भाई उनको भी मालूम हुआ कि ये ऐसी चीज है, हिंदुओं में ऐसे ऐसे अवतार ऐसी बात हुई है। महाराज इन रामायण के सुनने से वीडियो देखने से बहुतों को ऐसा विचार हुआ, तो रामचरित्र ऐसी एक चीज है कि वो सब तरह से लाभ देने वाली है। अवतारों में रामावतार आदर्श है, आदर्श किसको कैसे करना चाहिए इसके लिए साधारण अवतम आ करते हैं, उसको अवतार कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो तो आई करणी करके ऊंचे बढ़ जाते हैं उसको अवतार कहने लग जाते हैं, अवतार नहीं होता, वो उतार होता है, ऊपर को चढ़े अवतार को नीचे उतरना। जैसे एक बड़ा शास्त्री है, विद्वान है, आचार्य पुरुष पास बालक को सिखाएगा तो क क क सिखाएगा, हाथ पकड़ के लिखवाएगा भी, क क बोलता भी है, तो क्या क याद करना है, बच्चे को याद कराना है। ऐसे भगवान हमारे में अवतार लेकर मनुष्य की तरह लीला करते हैं, जिसको मनुष्य कर सके। इस तरह से माँ बाप के साथ कैसा करें, भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करें, प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करें, अरे भाई बैरी उनके साथ में भी कैसा बर्ताव, अरे वो अनबल की न रामो, बैरी का भी अनबल नहीं किया। अमित को भेजते हैं तो काज हमार तासु हेतु हुई, उसका भी हित हो। सीता जी को ले गया, अपराध किया सब कुछ, परंतु हित भगवान के हृदय में हित है। पर हित बस जिनके मन माए तीन कर के दुर्लभ सुनाए। तो ऐसे भगवान के चरित्र बड़े पवित्र हैं, और उनका अपने साथ हम बैठकर पाठ करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो रामायण के चौपाइयों की तरफ ध्यान दें, अर्थों का अनुसंधान करते हुए पाठ करें, नहीं तो कम से कम साथ में हो जाए। अभी भगवान का जब जन्म होकर के चरित्र होगा गाड़ी, वो और विलक्षण होगा। उस समय से हम भगवान राम जी के साथ रहे हैं, उनमें कई सीता जी के पल तो जनकपुरी के बढ़ जाओ, कोई हर्ज नहीं, राम जी के साथ रहो, वनवास में जाए राम जी के साथ में, इस तरह से साथ रहो और वो अर्थों को ठीक तरह से समझो। तो रामायण में विचित्र विचित्र बातें हैं, वे समझ में आने लग जाएगी। रामायण और गीता ये दो ग्रंथ क्या है, तो विलक्षण चीज है, ये खुद कृपा करते हैं। मैं तो ये बात मानता हूँ कि जिनको वर्णमाला कुछ आती है, क ख ग सीख लिया, वो भी अगर सामने रामायण रख करके ऐसे अंगुले देख रहे ठीक करे तो बना लो, पढ़ना आ जाए, रामायण पढ़ लो, रामायण का पाठ करने से उसी है, रामायण का पाठ होने पर दूसरी पुस्तक पढ़ने लग जाएगा। आरंभ की वर्णमाला सीखने वाले बालक भी, बूढ़े बड़े भी, वे करे तो रामायण आ जाए। रामायण कृपा करती, गीता कृपा करती, ये स्वयं कृपा करके आते हैं। दो ही तो अवतार है राम और कृष्ण, और दो ही तरह की शिक्षा होती है, करके बताना, कहकर बताना। कृष्ण भगवान ने कहकर बताया, राम जी ने करके बता दिया, ऋषि और साध्य लोग खराब भी होते हैं, इसी की शिक्षा भी है। तो राम जी ने बड़ी सुगम शिक्षा दी, करके बताया सब कैसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो उनसे आदमी जल्दी सीखता, उससे हमारे शिक्षा मिलती है। वो रामायण जी का ग्रंथ है और उसका पाठ अभी शुरू हो रहा है, और लोगों का भी कितना उत्साह है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैंने पहले कहा भी था, अपने संबंधी कुटुम्बी परिचित जितने मित्र आदि को उनको खबर कर दो कि रामायण का खत्म यहाँ पाठ होगा, आप लोग पधारो और आवे, उनका आदर करो, सत्कार करो। यहाँ के लोगों में भी बड़ा उत्साह है, बड़ा प्रेम है, और कोई त्रुटि भी हो जाए तो आने वालों को क्षमा करनी चाहिए, भाई प्रबंध करने वालों के द्वारा त्रुटि हो सकती है, परंतु यहाँ के लोगों में उत्साह है, कृष्ण से लोग आवे, अधिक से अधिक अपन ठीक तरह से भोजन का प्रबंध हो, रहने का प्रबंध हो, जल का प्रबंध हो, ऐसा लोग कर रहे हैं। परंतु समुदाय भाई किसी के मन के विरुद्ध भी हो जाए तो क्षमा कर, कोई बात नहीं, इतनों का प्रबंध करते हैं, किसी के मन के विरुद्ध भी कुछ बात हो गई, ऐसे ही प्रबंध करने वाले बैठा हुए वहीं बैठो, उसमें हाथ मत करो, चिद मत करो, नहीं तो वो दो चार पांच दस बैठाने वाले अपने बैठाने हजारों आदमी, तो कैसे वो पुरुष कहेंगे, उनका हुक्म पालन करो। और बैठाने का आदि का प्रबंध करे, उन भाइयों से बहनों से कहना है आप नम्रता रखो, हुक्म मत चलाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहां करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ, ऐसे नम्रता पूर्वक कहो, उनसे बड़े प्रेम से बैठाना हो तो इस तरह से उठाकर बैठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं दूसरे ऐसे बैठ जाओ, तो वो ऐसा बैठाने में भी ऐसा समझो कि मैं कसूरदार हूँ, इनकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूं, ऐसे कसूरदार बन करके प्रार्थना करो तो उनके ऐसे हुक्म मत चलाओ, आग्रह अभिमान मत करो, उन्हें आप प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करके शासन करो, ऐसा दुर्भ शासन नहीं। इस तरह से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, भोजन आदि करना है, घर पिलाना है, बैठाना है, किस तरह से काम करो, तो जो काम करने वाले हैं उन भाइयों को चाहिए नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, कसूरदार बस करके, जैसे कसूरदार होता है ऐसे बन करके उनके साथ प्रेम का बर्ताव करो। और आने वाले भाई हैं वो भी ऐसी क्षमा रखो, कोई बात नहीं, परदेश कलेश नरेशन को, हम दूसरी जगह जाते हैं तो राजा महाराजाओं को भी प्रतिकूलता श्रेणी पड़ती है, तो अपने भी यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो पश्चात क्या बड़ी बात है, उनको कष्ट सहना है, वो तो बड़ी तपस्या है, बड़ा त्याग है, बड़ी अच्छी बात है, आराम के लिए थोड़े आए, हम तो लाभ लेने के लिए आए हैं। ऐसे रुचिकर सब बड़े प्रेम से आदर से ऐसा रहे जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, जितनी क्षमा होगी, जितनी सहिष्णुता होगी, जितने ठीक धैर्य पूर्व सुनोगे, अर्थों में ध्यान दोगे, उतना अधिक लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण
राम। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 तदनुसार 20 अगस्त 1989 को प्रातः 8:30 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये प्रवचन हुए। राम।